अपने गुरु पार्षद में है। इसी प्रकार से हमारे आज आचार्य देव का स्थिति है, बहुत कृपालु, बहुत दयालु, बहुत उदार, उनके पाद पद में यही प्रार्थना है। हे दयालु वैष्णव ठाकुर, हे कृपा प्रिय, जैसे मैं गुरु पाद पद्म के आश्रम में रहूं, उनके आश्रम में रहकर मैं सेवा करता रहूं, सेवा की प्रॉपर्टी में कुछ नहीं जानता हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं है, शिक्षा वहीं से मिलती है, शक्ति वहीं से मिलती है, शक्ति से मैं कर सकूंगा, ये जैसे मैं हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर सकूं, ये मेरे पाद पद्म में मैं पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ।
राधिका माधवासं प्राप्तो च सत्कृते कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्तिषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। मैं सबसे पहले गुरु पाद पद्म परमाराध्य सम्मित लीला प्रविष्ट विष्णुपाशी श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मैं आत्मनिवेदन करता हूँ। तत्पश्चात आज जिनका शुभाविर्भाव है वो गुरु पृष्ठ श्रीमद भक्ति वेदांत बावन महाराज जी के चरण कमलों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। पश्चात त्रिदंडी पादगण, वैष्णवगण, वैष्णवीगण, सबको यथायोग्य अभिवादन है। आज अभी तक उत्सव चल रहा था, व्यास पूजा महोत्सव। महोत्सव किसको कहते हैं? आनंद को महोत्सव कहते हैं। साधारण आदमी खाने पीने में ही अच्छी अच्छी चीजों को देने में और उसको ग्रहण करने में उत्सव मानता है, किंतु गौड़ीय वैष्णव लोग हरी कथा का ही उत्सव करते हैं। आज बहुत विलंब हो गया है, 1:15 बज रहा है, अभी तक आप लोग 10 बजे से लेकर 3 घंटे तक हरी कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं आज बहुत ही सौभाग्यवान हूं कि आज सुंदर सुंदर गुरु तत्व के संबंध में, गुरु तत्व और उनके उपदेश, सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करने का मुझे सुयोग मिला, साथ साथ में आप लोगों को भी होगा। विशेष करके बड़े आनंद की बात है कि हम लोग प्रभुपाद की धारा के सारस्वत गौड़ीय वैष्णव सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और विशेष रूप में सभी आए हैं। अब तो प्राचीनों में एरंडे एक पेड़ होता है, बड़े बड़े वृक्षों में अब एरंड रह गए हैं। हम लोगों ने देखा प्रभुपाद जी के बाद में पूज्यपाद नेमी महाराज, वन महाराज, पूज्यपाद श्रीधर महाराज, पूज्यपाद भक्ति विलास तीर्थ महाराज, हम लोगों के गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप स्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी और पूज्यपाद सौती महाराज, जाजावर महाराज, गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी महाराज, ऐसे ऐसे विश्व विख्यात धुरंधर विद्वान मारथंड ये कहिए धर्म राज्य के, कैसे कैसे थप सकते हम लोग। जब वो लोग एकत्रित होते कोने में हम लोग बैठे रहते थे, आज से विभूतियां न जाने कहां चली गई। आज लोग हम लोग प्राचीन वैष्णव कहना लेने लगे, जब उनकी तरफ में देखते हैं कहां हम उनकी योग्यता, कहां उनका गुण, कहां उनकी गुरु निष्ठा, कहां उनका दिव्य प्रचार विश्व में सर्वत्र। उनका नाम भी छोड़ गया अभी, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज। आज देखिए कहां कहां सब कैसे कैसे प्रचार कर दिया विश्व भर में। उनकी तरफ में देखता हूं और अपने तरफ में हम लोगों के तरफ में देखता हूं, निराशा होती है। प्राचीनानंद भजन अतुलम शिणवतांग दृश्य, कहां वो लोग इतने योग्य और कहां हम। तब ये आशा है जब जैसे भी हैं, अभी आप लोगों ने पूज्यपाद श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी का सुना, भी इन लोगों का सुना, एक आशा की यही बात है कि जने जने शक्ति धरे ब्रह्मांड धरे। ये बात ठीक है, देखिए कैसा ओजस्वी भक्ति का। तो समय हो गया है, सवा बज गया है, बहुत विलंब हो जाएगा। मैं भी तो एक पुष्पांजलि देना चाहता था, तो हमारे पुष्प वैसे नहीं है पुष्पांजलि के योग्य। तो भी दो एक बातें मैं कहना चाहता हूं, बस दो तीन मिनट में। पीछे शाम को 4 बजे के बाद में फिर से धर्मसभा होगी। मैं विशेष रूप से पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत बाबू महाराज इत्यादि के संबंध में, उनके चरित्र के संबंध में, उनकी गुरु निष्ठा के संबंध में और उनके जो गुण हैं, मैं कुछ व्यक्त करने की चेष्टा करूंगा। क्योंकि हम लोग, मैं बहुत करीब करीब 45 वर्ष से उन लोगों की चरण की छत्र छाया में मैं हूं। मैं जब से पहले मैं आया तो उन्होंने ही मुझे स्टेशन से, तिवारी जी कहाँ है, तिवारी जी, तिवारी नहीं, तिवारी जी कहाँ है, खोज करके हमको आश्रम में ले आए। हमको कुछ लेना देना जो कुछ होता था यही भंडारी थे गुरु महाराज जी, और कोई था ही नहीं, ये थे। और एक पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी थे। ये केवल 8 वर्ष की उम्र या 9 वर्ष की उम्र में इनकी मैया प्रभुपाद जी की शिष्या थी और वो गुरु जी के चरणों में इनको दे गई, और तभी से ये मठ में है। गुरु जी ने इनको लिखाया पढ़ाया भक्ति भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में गुरु जी ने इनको भर्ती करा दिया। और कैसे पढ़ाते थे, आज एक लोग श्लोक याद करेगा तो एक लेमन जूस देंगे, एक एक लेमन जूस के लिए एक एक, तो ये 5, 6, 6, 8, 8, 10, 10 एक दिन में याद कर लेते, बड़ी श्रुतिधर। और एक बार यदि सुन लेंगे दूसरी बार सुनने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े श्लोक हम लोग रचते पढ़ते घिसते पिसते सारा दिन में मुश्किल से एक या आधा श्लोक करेंगे, आधा में आधा भूल जाएगा हम लोगों का। और उनका वो सचमुच में इस समय कोई अभिमान की तो बात नहीं, मैं देखता हूं कि वो हमारे गौड़ीय वैष्णव के अभी शब्दकोश हैं। शब्दकोश माने श्लोक इत्यादि कहां क्या क्या रेफरेंस है, इतना उनको याद है। मैं समझता कि और किसी को है कि नहीं, क्योंकि और सब वैष्णव के संपर्क में नहीं गया, किंतु इनके संपर्क में हूं। बहुत याद, सारे श्लोक गीता का एकदम धरेंगे तो आरंभ से लेकर के एकदम शेष, बीच में ठहरने का कोई जरूरत नहीं। भागवत के भी ऐसे ही श्लोक, वेदांत के सूत्र तो ऐसे ही एकदम, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य जता, एकदम तत् की शब्द जोनी त्वात इत्यादि से लेकर के एकदम अंत तक पहुंच जाएंगे। गुण क्या है उनमें, एक गुण उनमें हमने मार्क किया, हम लोग थोड़ा सा कुछ करते हैं ना तो उसे भी बढ़ करके कुछ कहते हैं। अपनी प्रशंसा जरूर किसी न किसी रूप में कर लेंगे, किंतु इनको आज तक अपनी प्रशंसा परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, किसी रूप में हमने नहीं देखा। ये बड़ा भारी गुण है। किसी न किसी रूप में जरूर हम प्रशंसा कर लेंगे अपनी, किंतु इनमें नहीं। गुरु निष्ठा ऐसी, जिस समय गौड़िया हमारे गगन पर विपत्तियां कुछ आई और सब लोग अपने अपने घरों में चले जाने लगे, छिन्न भिन्न होने लग गया, मामला मुकदमा इत्यादि उठ गया, उस समय में ये अपना हरिनाम करते और रसोई बनाकर उन लोगों के लिए पास में, गुरुजनों के पास में ले जाते, साथ साथ में वकील के पास में जाते, एक मिनट का समय इनको नहीं। हम लोग रहते तो भाग जाते कभी घर। जब स्कूल में पढ़ते, इनका नाम था संतोष, पहला नाम था, और जब मठ में आए थे इनका नाम हुआ
सज्जन सेवक।
गुरु महाराज ने इनका नाम रखा सज्जन सेवक। तो सज्जन सेवक का काम यह था कि स्कूल में जाने के पहले वैष्णव के लिए पत्ता इत्यादि काट करके लाना, वैष्णव लोग भोजन करने के लिए बैठेंगे, आसन देना, पत्ता देना, नमक देना, नींबू देना और ये सब का पानी दे देना, और इसके बाद में प्रसाद जब हो जाएगा तो वो झाड़ू दे करके सब साफ कर, ये इनका काम था। ऐसी सब सेवा नहीं करने से ना देखे जो कैसे ये पाए। भाषण भी अभी बतला रहे थे, 4 बजे बैठे और 11 बज गया, ये अतिशयोक्ति नहीं, गाड़ी रुकती नहीं है, राजधानी दिल्ली से छोड़ती है, रुकने का नाम नहीं लेती। हम लोग अधिक से अधिक 8 घंटा और से अधिक अधिक यदि जोर करेंगे तो 1.5 घंटा और नहीं तो बेसी से बेसी 1 घंटा। अब इसमें हार जाएंगे और वो तत्व पर तत्व एकदम बोलते ही चले जाए, सरल सहज स्वाभाविक भाषा में। बंगला पर तो उनका इतना कमांड है ने? कि बड़े बड़े सिद्धांतों को सरल सहज भाषा में व्यक्त कर देंगे। उनका खंडन करने का एक अपना तरीका है, खंडन ऐसा नहीं करेंगे जो सभी लोग समझ जाए, हम लोग नहीं समझ सकते उनका खंडन। बड़े पोलाइट भाषा में, नम्र भाषा में, उसके आणी भूड़ी जितना है सबको निचोड़ करके सब रख देंगे, किंतु किसी को उनके समझ में नहीं आएगा। बहुत ही सरल सीधे रूप में करते हैं, बहुत ही सरल है। सही सुनो, वैष्णव को जो होना चाहिए ना सही सुनो इत्यादि गुण, उन लोगों में सब सही सुनता गुण है। हमने देखा है उनके घर से उनकी मैया, उनके भाई, वो 4 भाई थे बड़े वो, और उनके बाद में छोटा उनसे एक था, दिल्ली में नौकर था बैंक में, और एक उसके बाद में निमाई पंडित, और एक था ध्रुव था वो पहला वाला बड़ा वाला बीच बामन महाराज के बाद में ध्रुव, और उसके बाद में एक और निमाई पंडित और एक अंत। तो आते थे, स्थिति अच्छी नहीं थी उन लोगों की, कुछ गड़बड़ हो गई इनके आने की वजह से, किंतु माया ममता कुछ नहीं, साधारण लोग जैसे हैं वैसे उनके साथ। बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं, उनके प्रति झुक जाते हैं, किंतु इनका ऐसा नहीं। पूर्व इतिहास भूली न सकल सेवा सुख पे मन, गुरु जी की सेवा में लगे रहते, अभी भी वैसे ही लगे रहते। गुरु तत्व किसको कहते हैं, इसके संबंध में मैं बहुत सी यादगारें हैं, समय पर कल या और समय बनाएंगे, केवल गुरु तत्व के संबंध में यही थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं। व्यास पूजा किसको कहते हैं? व्यास जी के स्थान पर जो है अपने हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में महाराज जी ने भी बतलाया, सौती महाराज जी ने भी, हम लोग के संप्रदाय धारा में और में है वो अषाढ़ महीने में जो पूर्णिमा होती है उसको गौड़ी पूर्णिमा कहते हैं। व्यास जी का जन्म तिथि है उस दिन सभी उनके चरणों में पुष्पांजलि देते हैं, यह साधारण है। और हमारे यहां व्यास जी के स्थान पर बैठ करके भगवान की गुण गाथा का प्रचार करता हुआ सब जगह विश्व में प्रचार करता है भगवान की गुण गाथा वो आचार्य हैं। आचार्य अपने दिन में अपने गुरु की और गुरु परंपरा की जो पूजा करते हैं उसको कहते हैं व्यास पूजा। शिष्यों से हम गुरु हम पूजा ग्रहण करेंगे ये नहीं, आचार्य या गुरु अपने जन्मदिन पर अपने गुरुदेव की साथ में वैष्णवों की साथ में गुरु परंपरा की कृष्ण जो आराध्य हैं उनकी राधा कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु इत्यादि की पूजा जो करता है उसको कहते हैं व्यास पूजा। नित्यानंद प्रभु जी का भी देखिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पार्षद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी को, अभी अधिक दिन नहीं हुआ, अपने जन्मदिन में जितने वैष्णव आते थे ब्रजवासी आते थे सबकी पूजा करते, तिलक लगाते, माला देते, वस्त्र देते, सब प्रकार से पूजा करते। यहां तक कि अपने जो शिष्य के समान हैं अपने गुरु भाइयों के शिष्यों को हम जैसे थर्ड क्लास के लोगों को भी माला देते और बड़ा आदर करते थे, अपनी गुरु परंपरा की पूजा करते, राधा कृष्ण की पूजा करते। ये सब आचरण यदि शिक्षा नहीं दी जाएगी तो आजकल जैसे बहुत से लोग ऐसा ही समझते हैं जो व्यास पूजा माने गुरु पूजा माने क्या, गुरु पूजा माने शिष्य लोग हमारी पूजा करें, ये उल्टी पूजा है, ये पूजा नहीं है। हाँ, इसको देख करके शिष्य लोग सीखेंगे और अपने गुरु जी की पूजा करेंगे, जरूर करना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये जरूर करेंगे। किंतु यदि गुरु ही अपना आज आदर्श नहीं करेगा, अपने गुरु गौरव की और गुरु की पूजा नहीं करेगा तो शिष्य का पूजा करेंगे। हम लोगों में बतलाया गया है जो श्रीमद् भागवत में अपने गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो, आचार्य मां बीजानिया, मां बीजानिया, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो। कौन है ये, कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। हमारे जी गोस्वामी जी उसकी टीका कर रहे हैं, ये साधारण जो कर्मी हैं उन लोगों के लिए ये ऐसा है जो अपने गुरु को भगवत स्वरूप माने तो शुद्ध जो वैष्णव हैं उनके लिए तो बात ही क्या है, उनके लिए जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो साक्षात हरिते न समस्त शास्त्रे, आश्रय विग्रह हैं। मूल आश्रय विग्रह हमारे दो हैं, एक बलदेव प्रभु जी और एक श्रीमती राधिका जी, दोनों कृष्ण से निकलते हैं, एक लादिनी शक्ति के रूप में और एक संधिनी के रूप में, कृष्ण स्वयं चित्त। अब दोनों उन्हीं से निकल करके फिर और वहां से फिर अब दोनों मिलेंगे, एक बलदेव प्रभु जी से धारा आई और एक श्रीमती जी से धारा आई, उन्हीं के दोनों के आश्रय में जो राधा कृष्ण की सेवा की जाती है और इसकी जो शिक्षा देता है वही आचार्य है। हमारे ब्रह्मचार्य जी ने क्या है प्राण गोकुल गोविंद ये बहुत सुंदर रूप से बतलाया, जो गुरु इसकी शिक्षा नहीं देता वो गुरु गुरु है ही नहीं है। और सब संप्रदाय में देखिए उसे हमारे ब्रह्ममाध्व गौड़ीय वैष्णव के संप्रदाय की एक विशेषता ये है, निकुंज जूनो रति के निषिद्ध या निर्भीर युक्ति अपेक्षण। और किसी संप्रदाय में राधा कृष्ण के ये सब लीलाओं का इतना इतनी सेवा नहीं है। गुरु का गुरुत्व तो इसी पर निर्भर करता है। बताया ना उन्होंने दूसरे श्लोक में गुरुवास्तव के महाप्रभुर कीर्तन नित्य गीत बाधित त्रमादन मनसो रसिन, ये सब श्लोक देखिए क्रमशः लेते जाते हैं। स्वयं ठाकुर जी की अर्चन पूजन इत्यादि भी करते हैं और इधर में निकुंज जूनो रति के लिए सिद्ध इत्यादि तक चले जाते हैं। यही गुरु का गुरुत्व है। जो इन सब की शिक्षा नहीं दे सकते उनको रूपानुगाचार्य तो कहा ही नहीं जा सकता। रूपानु किसको कहते हैं? हम लोग सबको गुरु वर्ग को रूपानु कहते हैं। रूपानु माने क्या? रूपानु माने उन्होंने रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से और उनकी कृपा से भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि ललित माधव विदग्ध माधव इत्यादि सब ग्रंथ लिखे। उसको पालन करने वाला ही रूपानुग नहीं है ना? नहीं, वो रागानुगा हो सकते हैं, राग के अंकश हो सकते हैं, उसमें दास्य भी हो सकता है, सख्य भी हो सकता है, बात्सल्य भी हो सकता है, मधुर भी हो सकता है, किंतु रूपानुग करने से क्या बोध होता है? रूप गोस्वामी अंतर से क्या थे? महाप्रभु जी के लीला के महाप्रभु के परिकर के रूप में रूप गोस्वामी है और वही राधा कृष्ण के परिकर के रूप में रूप मंजरी है। रूप मंजरी की अपनी सेवा क्या है? वो जो अपनी सेवा है रूप गोस्वामी की, किस प्रकार से प्राण सखी हो करके मंजरी हो करके राधा पक्षी हो करके जुगल की सेवा करते हैं, जुगल की सेवा करते हैं, किंतु जुगल सेवा में भी उनका अभिनिवेश और उनकी टेंडेंसी किधर में है? राधा जी के तरफ में झुकी हुई है। कृष्ण बुलाएंगे, राधा जी खड़ी हैं, कृष्ण और राधा दोनों बुला रहे हैं, रूपमंजरी किधर जाएंगी? कृष्ण के तरफ ऐसे करेंगी और सीधा राधा जी के तरफ में चली जाएंगी। ये रूपमंजरी की है। यदि कृष्ण हार जाएंगे तो सब सखियों के साथ में सबसे पहले ताली बजाने वाली रूपमंजरी जी होंगी ना? और कृष्ण को चिढ़ाती हैं, कृष्ण को चिढ़ाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री रूप मंजरी प्रथिता पुरेश्मिन इत्यादि श्लोक में उनकी वंदना की है। रूपानुग माने क्या? एकमात्र रूप गोस्वामी के जो आचार विचार और उनका स्वरूपगत उनकी जो सेवा है उसको भली भांति जान करके अपने शिष्यों के हृदय में भी उस सेवा की वासना को प्रदान करते हैं, इसको कहते हैं रूपानुग। हम लोगों का संप्रदाय ये है। पहले पहले नारद जी आए, उन्होंने दशरस इत्यादि की सेवा दी, सेवा का प्रचार किया, और अभी बड़े बड़े आचार्य लोग आए, स्वयं भगवत तत्व आए, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस चीज को दिया वो लोग उसके सामने तक आसपास में नहीं आए, और चैतन्य महाप्रभु ने उन चीजों की हृदय में सब रूप गोस्वामी के हृदय में स्वाभाविक रूप से प्रेरणा कर दी। कहां किया? प्रयाग में। और कहां किया? जो बाकी रह गया ना स्वयं सहचर इत्यादि के माध्यम से सब कुछ उनके अंदर में दे दिया। उन चीजों को अपने हृदय में लेकर के और शिष्यों के हृदय में इसको जो दे सकेगा वो यथार्थ में हमारा रूपानुग गुरु जो वैष्णव का आचार्य है। प्रभुपाद को इसीलिए कहते हैं महाप्रभु नमो महावदन्याय। प्रभुपाद जी ने कहा जो भक्ति विनोद ठाकुर नमो महावदन्याय, किस लिए? महाप्रभु जी ने जो चीज दिया ना, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नए सोने के थाले में नए रूप से उस चीज को परोसा, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी महा महावदन्याय। और प्रभुपाद जी कैसे हैं? प्रभुपाद जी ने भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्रकाशित कर दिया, साथ साथ में समस्त गुरु परंपरा को महाप्रभु जी को और राधा कृष्ण के को उन्होंने प्रकाशित किया। ऐसे महाप्रभु को जो प्रकाशित करने, प्रभुपाद को जो प्रकाशित करने वाले हैं, ये लोग धन्य हैं। आज हमरा हम लोगों का इतना सौभाग्य है, अपने गर्व सौभाग्य पर हम इठलाते हैं, ये ऐसे ऐसे परिकरों के प्रभुपाद के गणों में हम लोग निकट में भी आए हैं, अभी दूर नहीं, सौभाग्य है। किंतु दुर्भाग्य है, उनकी उन वस्तुओं को मैं नहीं ले सका, ये महापुरुष लोग तो सब लिए हैं। थोड़ा पूज्यपाद बामन महाराज जी उन्हीं कड़ी में एक हैं। हम लोगों का सौभाग्य है, जैसे ऐसे महापुरुषों का संग मिला, यदि हम लोग उनके विचारों को ग्रहण करके भगवत भक्ति राज्य में हम यदि प्रवेश कर सके, हमारा अहो भाग्य होगा। आज मैं यही तक बोल करके वक्तव्य समाप्त करता हूं, क्योंकि बहुत करीब करीब समय हो गया, वैष्णव के चरणों में अपराध न हो जाए, आप वैष्णव लोग हमारे ऊपर में कृपा करेंगे, जिससे कि हम लोग अब आरती कर
नमो महावन्नाय कृष्णाय कृष्ण धूप और जला मैंने कहा था, उसके बाद में आरंभ करता हूं। पहले मैंने केवल ये बतलाया था कि आज व्रास पूजा सब हम लोगों के गुरु परंपरा में व्यास जी की गद्दी पर बैठकर जो भगवत कथा का प्रचार प्रसार और आचरण करता है वो आचार्य है या गुरु होता है, उसको भी भगवान का स्वरूप ही समझो। बतलाया गया है कि साक्षात खरीदते न समस्त शास्त्र तथा भाव देते वो सभी धीया भिन्नम पश्य इत्यादि शास्त्रों में गुरु को भगवान से अभिन्न देखने के लिए जो कहा गया है वह प्रियत्व भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए शंकर जी का भगवान से अभिन्नत्व इसी विषय में भगवान के बहुत प्रिय है। सत् संदर्भ में से तत्ता भक्ति संदर्भ में इन्होंने गुरु तत्व के संबंध में ये सब चीजें बतलाई, विशेष करके ये बतलाया कि पहले गुरु का लक्षण दिया, जो गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए। गुरु तो कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी सभी करते हैं, किंतु गुरु का लक्षण क्या है सवेरे कुछ हम लोगों ने बतलाया था कि रूपानुगत ही गुरुत्व है। गुरुत्व का माने अंतिम उत्कर्ष है। वैसे जो कोई भी परमार्थिक शिक्षा देता है मध्यमाधिकारी भी, और यदि वो सरल निष्कपट वैष्णव है तो वो गुरु है। भले ही शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो भी कोई बात नहीं, भगवान में भक्ति होनी चाहिए, यही प्रथम उनको कहा गया है कि जैसे समस्त शास्त्रों में पारंगत होने पर भी यदि भगवान की अनुभूति नहीं है तो गुरु नहीं है। भगवत अनुभूति होनी चाहिए, जिसके हृदय में स्वयं ही भगवान नहीं है वो दूसरे को शिष्यों के हृदय में राधा कृष्ण को कैसे बैठा सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। इसलिए भगवत अनुभूति संपन्न ही गुरु का प्रधान लक्षण है और शास्त्र ज्ञान इत्यादि गौण लक्षण है। बहुत से लोग शास्त्र ज्ञान की तरफ में चले जाते हैं और अनुभूति की तरफ में नहीं ध्यान देते। इसलिए गुरु करने पर भी गुरु और शिष्य दोनों को विशेष किसी लाभ नहीं। इसलिए गुरुत्व का यही प्रधान लक्षण है कि भगवत अनुभूति। भगवत अनुभूति भी किस रूप में, जो हमारे संप्रदाय का वैशिष्ट्य है, रूप गोस्वामी के विचारों में परिपक्व हो और अनुभूति संपन्न हो तो वो यथार्थ में हम लोगों के संप्रदाय के हैं। बतलाई ये भी गया है कि हम लोग के अंदर में काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य है, इसका तुष्ट अपराध है, धामापराध है, सेवापराध है। इनको दूर करने के लिए एक स्पेशल रूप में शक्ति की आवश्यकता है और वो भी बड़ा कठिन है। जैसे गीता ने बतलाया काम एष क्रोध एष, काम यह काम और यह क्रोध मनुष्य को अधोपातित करता है, इसको दूर करें। किंतु क्रोध को कैसे दूर करें, पहले विषयों में चित्त जाता है, कामना होती है, तब काम ये सब पहले काम होगा और काम के पूरा होने में यदि बाधा आती है तो क्रोध हो जाएगा। यदि क्रोध होगा तो आत्मश्रम मोह माने बुद्धि मोहित हो जाएगी, क्या करणीय क्या करणीय बुद्धि लोप हो जाएगी और इसके बाद में विनाश हो जाता है। इसलिए कामना ही नहीं होनी चाहिए तो कामना कैसे नहीं होगी, कामना कैसे नहीं क्यों नहीं होगी, मन तो उसी तरह का बना है। तो इससे बहुत मुश्किल होता है जैसे इनसे छुटकारा पाए। इसलिए क्रोध भी नहीं जाता है, काम भी नहीं जाता है, क्रोध भी नहीं जाता है, ये कैसे सब जाएगा। मन को कामनाओं में ही मत ले जाओ। इसलिए सब विषयों के तरफ में देखना ही मना होगा, ये भी असंभव, बहुत कठोर कठोर उपाय और वो भी ठीक से नहीं है। किंतु एक गुरु की सेवा करने से काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अपराध इत्यादि सभी कुछ, एक गुरु की सेवा से। किंतु गुरु भी उसी कोट के आने जाए, कैसा कोटी का कितने ते करिया क्यों आर ना करी हमने आशा, वो क्या है
गुरु मुख पद्म
गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य। ऐक्य माने क्या, इसके दो अर्थ हैं। गुरु मुख से जो वाणियां निकली हैं उसी को एक को ही सर्वस्व समझ करके उसका पालन करो और दूसरा है शास्त्र वैष्णव और गुरु, तीनों बातों को एक करके, क्योंकि और नरोत्तम ठाकुर का ये है तो नरोत्तम ठाकुर ने वो भी लिखा
साधु शास्त्र गुरु
साधु शास्त्र
गुरु बाबू
तीन करिया इसलिए ऐसे का अर्थ वो लेना पड़ेगा। क्या शास्त्र जो कहते हैं और वैष्णव जो कहते हैं और जो गुरु कहते हैं, तीनों को एक लेना पड़ेगा। यदि फर्क है, कोई उसमें भेद है, तो जिसमें दो एक होते हैं उनको लो और उसके अनुसार में विचार करो। यदि तीनों का एक ही विचार है तो वो ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तीनों में से दो एक तरफ हैं, एक एक तरफ है, तो कुछ गड़बड़ी है, हो सकता है उसका उद्देश्य कुछ हो, समझने में गड़बड़ी हो रही है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी एक कहते हैं, प्रभुपाद जी एक कहते हैं, और उसमें भक्ति विनोद ठाकुर का शास्त्र भी ठीक कह रहे हैं एक उनके शुरू में, तो प्रभुपाद जी कहेंगे गलत कहेंगे, नहीं वो सिद्ध है ना, इसलिए वो जो कहते हैं वो ठीक है, समझने में भक्ति विनोद ठाकुर को हमको दोष है ना? ऐसा उसमें मत समझो। प्रभुपाद जी जगत विख्यात हैं, सिद्धांत परिपक्व हैं, भगवत अनुभूति संपन्न हैं, शास्त्रों का जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो जिस लाइट में शास्त्रों की बातों को कह रहे हैं या भक्ति विनोद ठाकुर के बातों को कह रहे हैं, कुछ अटपटा लगने पर भी वही ठीक है। ऐसा ही एक हुआ था अभी, कृष्णेति जस्य ग्रंथं मनसा ध्रियेत दीक्षास्तेत प्रणतभीष्य भजन तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य मन्न निन्दादिशून्य हृदमेप्सति संलब्धा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एक नाम यदि करता है उसको प्रणाम करो, यदि उसकी दीक्षा हो गई है तो मन के द्वारा प्रणाम करो और ऊपर से भी प्रणाम करो, और जो निंदा इत्यादि शून्य होकर के निरंतर हरि नाम करते हैं और अष्टकाली लीला सेवा में अंतर्मना होकर के भजन करते हैं, तो अपना प्राण देकर के भी उसको बंधु जान करके, परम हृदय का बंधु जान करके उसकी सेवा। प्रभुपाद ने कहा, थोड़ा सा अदल कर दिया अर्थ, श्लोक तो एक ही, प्रभुपाद ने कहा दीक्षास्त चेत, यदि ऐसा है तो एक कृष्ण नाम भी यदि वो करता है तो वो शुद्ध नाम है। ऐसे महात्मा को मन के द्वारा, मन माने आदर के साथ में और शरीर के द्वारा उनको प्रणाम करो, दीक्षास्त चेत। इसी पर कहीं विचार हो रहा था, कुछ और लोग थे बैठे, वो लोग कह रहे थे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का कहना है ठीक है, और गुरु जी ने कहा भक्ति विनोद ठाकुर को कौन चिन्हाया, पैसा कौन दिया, कैसे जानते हो भक्ति विनोद ठाकुर को, प्रभुपाद ने दिया, और प्रभुपाद डायरेक्ट उनके शिष्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर के, उनके शिष्य हैं, उनके विचारों का अवलंबन किया है और जो कुछ सुना है उन्हीं से सुना है, तो ये जरूर भक्ति विनोद ठाकुर का ही विचार ये कह रहे हैं, इसलिए ये ठीक। अंत में बात धोकर के सब लोगों ने इसको स्वीकार, इसलिए विशेष विशेष बातों में उसको विचार करना चाहिए। इसलिए गुरु की सेवा विषम्भ रूप से होनी चाहिए, विषम्भ होने के लिए हमको उसी लाइन पर पहुंचना होगा, उसी स्टेज पर पहुंचना होगा जिसमें गुरुदेव हो। भगवान की पूजा करने के लिए भगवान के समान बनना पड़ेगा, तो गुरु की सेवा करने के लिए भी गुरु के विचारों के निकटतम होना पड़ेगा, उनके विचारों को समझना पड़ेगा क्या चाहते हैं। इसलिए अदेव होकर के देवता की जैसे पूजा नहीं कर किया जाता, ऐसे गुरु के विचारों को समझे बिना गुरु जी की सेवा भी नहीं है। इसलिए वैसे भी समूप से यदि सेवा की जाए तो गुरु प्रसन्न होने पर, और लोग चाहते हैं भाव सागर से करना, जैसे सदरी ये सब बच्चे कर रहे थे, कोई मुख्य के लिए, कोई वैकुंठ के लिए, कोई द्वारका के लिए, कोई कुछ चाहते हैं, कोई सुबह से दाम का अनुगत्य के लिए, कोई जसुदा और नंद बाबा के अनुगत्य के लिए, कोई सखियों के अनुगत्य के, और हम लोग के गुरु वर्ग क्या चाहते हैं, रूप गोस्वामी के चरणों की धूली की सेवा की प्राप्ति की, ये सबसे बढ़कर की चीज है। क्या प्रभुपाद धूलि जन्मनि जन्म। मैं समझता हूं कि राधा कृष्ण की सेवा की प्रार्थना की अपेक्षा भी जीव स्वरूप के लिए यही सबसे सुंदर और उत्तम ये अभिलाषा है। इसे बढ़कर के और कोई अभिलाषा नहीं हो सकती। इस गुरु परंपरा में श्रील प्रभुपाद के, प्रभुपाद जी आए तो उनके बहुत से परिकर हुए और बहुत थोड़े समय में ही विश्व में महाप्रभु जी के आचरित और प्रचारित वाणी का प्रचार किया। उनमें से नित्य लीला प्रविष्ट अंग विष्णुपाद इसमें भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी अन्यतम है, इनके ये शिष्य हैं, यही इनका परिचय है। वैसे किसी का परिचय दिया जाता है वंश के अनुसार, पिता का माता का परिचय देने पर उसका परिचय होता है। तो ये प्रभुपाद जी के की शिष्या थी, इनकी मैया, मैया का नाम मुझे याद नहीं, याद है कोई मैया इनकी थी, सरोदवासिनी, सरोदवासिनी तो
भगवती देवी,
भगवती देवी, भगवती देवी इनका नाम। इसमें से किसी ने देखा है इनको?
मैं देखा,
कोटा देखो,
नवद्वीप मठ है, गुरु है ना,
अप्रकट करे
प्रकट समय करे होने के देखे, जल्दी गांव से देखे
अच्छा
गुलाब बगान छोड़ कुड़ी फूल तू दा हम बोल ले जाए महाराज आपने नाम बोल फैला तू दा पर चले तो नहीं मॉल है।
ये प्रभुपाद जी की शिष्या भगवती, और इनके पिताजी कौन थे? हमारे गुरु महाराज जी के शिष्य थे, बाकी इनका वंश का सब लोग, एक मैया को छोड़ करके बाकी सब इनका वंश, इनके भाई पिता और चाची इत्यादि सब लोग गुरु महाराज जी के शिष्य, इनकी मैया सबसे पहले प्रभुपाद जी के आश्रित थी, तो उन्हीं ने गुरु जी के चरणों में इनको सौंप दिया, छोटी उम्र में सौंप दिया। इनका पालन पोषण पिता तो वो थे गुरु जी, और पालन पोषण कौन करता था? नरहरि प्रभु, वे गौड़िया मठ की माता जी थी। कोई पैखाना पेशाब कर देता बिछौने पर तो भी साफ कर देते, और रात में आरती के समय में सब बच्चों को जाकर के देखते थे, लालटेन की उसमें तो बिजली नहीं थी, सबको देखते कैसा कैसा सोया है, उसको उठा करके ले आते, उनको पढ़ाते लिखाते खिलाते पिलाते प्यासे रखते। तब इतने उस समय में लोग थे, संसार में जितना लोग प्यार करते हैं गुरु उससे यदि अधिक प्यार करता है तभी तो ये सब बच्चे उनको इनके प्रति आकर्षित होंगे, इसलिए गुरु को इतना स्नेहशील होना चाहिए तभी वो सबको आकर्षण कर सकते।
तो ये
बतला के बचपन का नाम संतोष था, पर इनका ये परिचय हुआ। एक तो गुरु परंपरा से ब्रह्मा मात्र गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के प्रधान शिष्यों में से एक अन्यतम श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के ये हम लोगों का पारंपरिक परिचय। और किंतु अभी इसमें परिचय रह गया है, ये अभी फूल परिचय है। और यदि वो कभी परिचय देंगे अपना अंतर परिचय तो पीछे पता लगेगा, और स्थूल परिचय बंगाल के कौन जिला जसोर जिला खुलना जिला खोलोना खुलना नरहरि प्रभु जी जसोर, हरिदास ठाकुर जी जसोर वहां के थे, किंतु बचपन से ही यहाँ पर गौड़ीय मठ में ये प्रतिपादित। उसमें भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में गुरु महाराज जी ने उनका भर्ती किया और वहीं रह करके आश्रम में ये पढ़ने जाते। इनके साथ वाले बहुत लोग थे जो पढ़ते थे, किंतु कोई भी से विद्यानुरागी थे और विद्यानुरागी सेवा के संबंध में आप लोगों को बतलाया जो पत्ता देना, झाड़ू देना, लोगों को पानी देना, नमक देना, ये सब, फिर झाड़ू उड़ू दे करके साफ करना, इनका ये पहले काम। तरकारी या मान्य करना है, एक वैष्णव मठों में एक प्रधान कार्य है। इतना स्विफ्ट, इतना तेजी से ये बनाते थे ना सब्जी, ये इसका हिसाब नहीं। इधर देख रहे हैं, इधर उधर
का छोटे बड़े
और छोटा बड़ा नहीं, एक साइज का। गुरु महाराज जी की सेवा करते समय इनको 104 बुखार हो गया और सब मठ में आए हैं बाहर के अतिथि लोग, वैष्णव लोग आए हुए हैं, और कोई दूसरा आदमी रसोई बनाने वाला नहीं, कोई भी नहीं। उस समय कहते हैं तुम सोया हुआ है, बुखार तुमको आया है, जल्दी उठो, एकदम डांट करके उठा दिया और वो आकर के 104 डिग्री में रसोई बनाया, सब काम किया, अरे जाओ पहले ये सब काम करके तब जाकर के सो। अभी 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 कुछ होगा ऐसा कोई करेगा 104 डिग्री बुखार में सबसे उसमें आदमी उठ ही नहीं सकते हैं, चिंता नहीं की जा सकती। ऐसे से मायापुर में बाढ़ आई थी, बावन महाराज जी के मुख से मैंने सुना, हम लोग जब गुरु जी के समय में एक साथ में रहते थे, प्रचार में भी एक साथ में, गुरु जी के साथ में, और कोई नहीं जाए तो हम और वो और कोई, ये चारे आदमी गुरु महाराज जी के साथ में मेदिनीपुर 24 परगना कहां कहां सब हम लोग उनके साथ में जाते, तो बहुत सी बातों को जानने के अवसर। वो कहते एक बार मायापुर में बाढ़ आई तो वो बाढ़ में घिर गए, तो वो नौका लेकर के, नौका चलाने में एक्सपर्ट होते हैं पूर्वी बंग वाले, तो नौका लेकर के और बाढ़ में गए, इतने खूब जोर से करंट आया और उनकी नाव को एकदम धारा में लेकर के डाल दिया। अब तो बड़ी भारी विपत्ति में पड़े। इतने में एक कोई पेड़ मिल गया, तब पेड़ को इन्होंने पकड़ लिया और नौका को उसमें से लगाया, इतने में देखा जो ऊपर से सांप ऐसे ऐसे सब कर रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं है जाने का, उस पेड़ पर ही आश्रय दिए गए हैं। अब चारों तरफ आपका जैसे उधर से अब सांप यदि गिर जाए तब तो फिर मस्त। भगवान का नाम लेकर के मैं चुपचाप पेड़ को पकड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद में लोगों को मालूम पड़ा तो फिर से लोग रो करके मल्ला सब लेकर के हमको बचाने के लिए आकर के सब लेकर के
अकेला ही थे
अकेला खड़ा हूं पहन करके
बेलगाछे
और बेलगाछ के ऊपर में या और पेड़ों के ऊपर में सब चढ़े थे। मैं भी जब आया तब मैं भी खड़ा हूं पहन करके ही 4 माइल 5 माइल 6 माइल 7 माइल सब चल रहा था। कलकत्ता में भी चल गया था और कुछ नहीं मोटा धोती ये सब हम लोग नहीं जानते थे ये क्या चीज है। मठ में चाहे शीत हो चाहे जाड़ा हो कितना बैराग्य के साथ में रहते थे। अब के आदमी कल्पना नहीं कर सकते कितना बैराग्य के साथ में। हम लोग भी बड़ी बड़ी नौकरी करते थे मठ में आकर के मार्किंग का ये वो भी इतना तक है और किस प्रकार से बैराग्य रखते थे दिन रात सेवा में लगे रहते। उनको तो और फुर्सत नहीं मठ का सारा भार उनके ऊपर है। गुरु जी तो पहाड़ बाहर इधर इसके बाद में फिर वो प्रेस के इंचार्ज चुचुड़ा में बने। प्रेस में पत्रिका आरंभ हुई हमारे आने के बाद ही में गौड़ीय पत्रिका। नरसिंह महाराज जी थे उनके चचा जी थे उनके पिताजी के बड़े भाई
उन्हें तो प्रभुपाद शिष्य थे।
प्रभुपाद जी के शिष्य थे नहीं
नरसिंह महाराज थे
नरसिंह महाराज जी प्रभुपाद के शिष्य थे और श्रीधर महाराज जी से संन्यास लिया किंतु बड़े पक्के आ गए। गुरु जी को और सब लोगों ने छोड़ दिया नरोत्तम प्रभु और सब लोग किंतु इन्होंने कहा रहेंगे तो सिंह के साथ में रहेंगे बकरी के साथ में
भेड़ के साथ
और उनके साथ में रह करते हुए मैं जब स्कूल स्थापित हुआ तो गुरुजी खुद बतलाते थे कि सब स्कूलों में रविवार को छुट्टी होती थी। हमने कहा कि हमारे स्कूल में रविवार को छुट्टी नहीं रह सके एकादशी को छुट्टी रहे तो गवर्नमेंट इसके लिए आपत्ति कर लगाया नहीं जैसा सबका स्कूल है वैसा रहे। हमने मैनेजमेंट आपका किंतु ये सब हम लोग करें यदि ये किस थ्योरी से होता है हमारी सनातन भारतवर्ष की परंपरा से होता है ना अंग्रेजों का के भाव से और उनके संस्कृति से होगा। हम लोग रविवार को नहीं हम लोग करेंगे तो ना है तो गुरुवार को करेंगे। गुरुवार माने क्या
बृहस्पति
अथवा एकादशी। उन्होंने कहा जिसे लड़के सब विषय में फर्स्ट रहे और एक धर्म का पीरियड उसमें फेल रहे हैं तो हम सबको फेल रहे हैं। और जगह है धर्म ऑप्शनल है ऐच्छिक उसे कोई मतलब नहीं। गुरुजी ने कहा हमारे स्कूल में यही होगा धर्म की परीक्षा होगी उसमें जो फेल हो जाएगा वो सब विषय में फर्स्ट करने पर भी
फेल माना जाए
उसको फेल माना जाए और ऐसा ही किया। अंत में मुसलमानों ने और दूसरे लोगों ने गवर्नमेंट को लिखा कि हमारा लड़का सब विषय में पास है किंतु धर्म विषय में फेल है तो इसको फेल कर दिया है तो हाई कोर्ट तक चला किंतु अंत में हमारे गुरु जी की ही जय है। तो इस तरह से गुरु जी का स्पेशल विचार था इसलिए उसी स्कूल में जो जो पढ़े सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति भले ही वो गृहस्थ हो गए किंतु धार्मिक प्रवृत्ति के लिए। मैंने कहा था ना कि बहुत छोटी उम्र में आए थे बहुत छोटी उम्र वो प्रभुपाद जी के समय में आए थे यहां तक कि श्रीधर महाराज जी से पहले आए थे। श्रीधर महाराज जी थे ना वो अकाल पास करके हम समय 1934 या 35 में आए थे 35 या 36 में
36 रुपये बाद प्रकट
नहीं 36 35 में भानु महाराज जी करीब करीब
30
में आए थे, बोल रहे थे
हाँ तक
30 में आए, और मैं आया हूँ 1946 में, तो देखो कितना 16 वर्ष हमसे पहले आए, और उस समय से गुरु जी की सेवा करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, कितने पहले 1930 में आए। इसलिए बहुत से बड़े बड़े लोग भी सिद्धार्थ पूज्यपाद महाराज इत्यादि भी उनसे पीछे आए हैं। तो उस समय में उन्होंने हरिनाम क्यों नहीं लिया,
तो
प्रभुपाद जी से हरिनाम
फिर माला का चुरा लिया उन लोगों ने,
अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो मठ छोड़ देना पड़ा, तो फिर इनको कहीं दूसरी जगह में हरिनाम लेने के लिए कहा, माला देने के लिए, उन्हें पर भी गुरु जी ने अंत में इनको संन्यास लेने के बाद में जो गौड़ीय वेदांत समिति कलकत्ता में स्थापित की तब से अपने पास रखा, और उनको हरिनाम दीक्षा सब, और संन्यास हमारे साथ में ही 1946 में त्रिविक्रम पूज्यपाद बावन महाराज जी का, त्रिविक्रम महाराज और हमारा, तीनों आदमियों का उस समय में संन्यास हुआ। उस समय में हम तीनों आदमी ने कहा हम लोग संन्यास के योग्य नहीं हैं, हम नव नहीं लेंगे। पहले बावन महाराज जी से पूछा गया, त्रिविक्रम महाराज से उम्र में सबसे बड़े हैं, वो करीब करीब 78 वर्ष के होंगे, पूज्यपाद बावन महाराज जी 74 वर्ष के या
73
और मैं इनसे भी 2 वर्ष छोटा है,
एक
तो ये 1 वर्ष। तो त्रिविक्रम महाराज जी से पूछा गया, मैं संन्यास नहीं लूंगा, तो क्यों? तो प्रभुपाद जी इतने बड़े विद्वान थे, नेमि महाराज कितने बड़े विद्वान थे, सौती महाराज कितने बड़े विद्वान थे, गुरु महाराज जी कितने बड़े विद्वान हैं, और सबको देखते हैं कितने बड़े बड़े विद्वान, और सभी लोग नहीं है, मैं नहीं। तो बावन महाराज जी से पूछा, उन्होंने कहा तब हम भी नहीं, तो हमसे पूछा गया तो राजा हम भी नहीं, तीनों आदमी हम लोग नहीं। तो नरसिंह महाराज जी बोले हमसे आकर के संन्यास नहीं ले रहा, तो नहीं क्यों, अतः हम योग्य नहीं, तो योग्यता तुम्हारी गुरु जी देखेंगे ना तुम देखेगा, गुरु जी देखते हैं ना तुम देखेगा, तुम अपने लाभ के लिए नहीं लेगा ना गुरु जी की सेवा के लिए लेगा, गुरु जी जो चाहते हैं वो होना चाहिए कि तुम जैसा होना है, तो घर में क्यों नहीं रहा, बड़े युक्तिवादी थे, तो हमारे दिमाग में आ गए, हमने कहा जैसे अच्छा मैं लूंगा चाहे जो कुछ हो जाएगा, गुरु जी यदि नंगता रखेंगे तो नंगता रहेंगे, संन्यास दे देंगे तो संन्यास ले लेंगे, लाल कपड़ा दे देंगे वो ले लेंगे, जो कुछ कहेंगे वही करूंगा, अपने विचार से अपने करूंगा। तब फिर बावन महाराज जी से पूछा तो उन्होंने हम नहीं ले, और जैसे तुम नहीं लेगा तो त्रिविक्रम महाराज से पूछा, वो भी राजी नहीं थे, कहा जैसे तब अकेले नारायण महाराज इनका गौर नारायण का अकेले संन्यास होगा, गुरु महाराज ने कहा जो अकेले ही इसका होगा और किसी का नहीं होगा। जब तैयारी पूरी हो गई तो फिर इन लोगों ने कहा जैसे उनका होगा, भाई जिस विचार से ये ले रहे हैं, जो गुरु जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, हम जो कहें तब फिर हम लोग भी लेंगे, अंत में वो लोग भी राजी हो गए। फिर इस तरह से तीनों आदमी का पहला संन्यास हुआ। सचमुच में मैं देखता हूं कि ये दोनों संन्यास के यथा उपयुक्त है। अभी तो मैं जैसा संन्यास का देख रहा हूं स्तर गिर गया है, जिनको कोई सिद्धांत का ज्ञान नहीं, विचार का ज्ञान नहीं, कोई भागवत इत्यादि में कोई प्रवेश नहीं, कुछ जानते नहीं, वो लोग भी संन्यास ले रहे हैं, तो इन लोगों की उस दृष्टि से देखें तो कितनी योग्यता है संन्यास की। सचमुच में योग्यता यही है कि मैं गुरु जी की सेवा करूंगा,
यही उनकी योग्यता है। बाण महाराज जी ने प्रारंभ से जो सेवा की है वो आदर्श है। घोड़िया पत्रिका की और गुरु महाराज ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब एक बार डिक्टेशन दे देते हैं, इसके बाद में नहीं देखते हैं कुछ, और यही सब कुछ करते हैं। पत्रिका बामन महाराज ही चलाते थे, कहां कहां से कैसे कैसे प्रबंध, गुरु महाराज जी एक प्रबंध दे देते थे बस, और बामन महाराज कहां कहां से सब चुन चयन करके कैसे कैसे सब, ये सब उस समय में ये सब नहीं था, कैसेट फैसेट कुछ नहीं था, किंतु वो सबको ऐसे कहां कहां से लिखे हुए कौन कौन पत्रिका में से लेकर के और उसको चलाते। बाण महाराज जी बड़े लज्जा वाले व्यक्ति थे, इसको लज कोंपड़ कहते हैं,
कन्या राशि
के बहुत लज्जालू, किसी से बोलेंगे नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कोई आदमी आने पर उनसे बातचीत नहीं करते हैं, अभ्यर्थना नहीं करते, किंतु बात ये नहीं, लोग समझते नहीं, बहुत लज्जालू स्वभाव के हैं, बातचीत भी बहुत कम करते हैं। अब वो बातचीत भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, पहले उनको पाठ करने के लिए दिया जाता था, हमारे समय में भी देखा है बामन पाठ करने, एक तो बोलते नहीं थे, गुरु महाराज जी हमको कहते थे पाठ करो, हमको बंगला नहीं आती थी तो भी जरा सुर से ये बयार को सुर से पढ़ता था और कीर्तन जानता था, थोड़ा सा कीर्तन करता था, कीर्तन कर देता था, तो गुरु जी कहते थे यदि कुछ भाव भी सो जाते कहीं पर ना तो हमको कह देते, और हमें लज्जा नहीं थी
देश पर
जो कुछ आए ना आए कह दिया तो हम उठ करके बोलने लगते थे, इसलिए हमको कहते। बाण महाराज जी को एक बार हमको याद है, हम लोग कहीं प्रचार गए थे, बाण महाराज के गुरुजन है तुम पाठ करो, महाराज बड़ी विपत्ति में फंस गए, अब क्या करें पाठ कैसे करें, मैंने वो चैतन्य श्रीमद भागवत लेकर के भागवत पढ़ रहे हैं, उसका श्लोक वो तो सब उच्चारण बहुत सुंदर और उसमें जो अनुवाद किया है बस उसको पढ़ करके फिर दूसरा श्लोक फिर अनुवाद, बड़ी
बोले चले
बोलते हैं बहुत लजालू स्वभाव। गुरु जी ने देखा इसको कैसे क्या करें, गौड़िया पत्रिका के वो इंचार्ज थे, संपादक थे, संपादक नहीं माने करते तो वही सब कुछ, वो प्रकाशक थे, उनको कहा जाए तुम प्रचार में जाओ, मशरूम से पत्रिका का वो लेकर के नव जोगेंद्र नहीं वो था विश्वनाथ
वृंदावन
झुंडा, उसको लेकर के चार दिन जाओ। बाबा महाराज जी बहुत दुख हुआ जी, हमारा मठ छोड़ा दिया, चुटुरा छोड़वा दिया, प्रिय छोड़वा दिया, और मैं क्या करूं, बहुत दुखी हुए,
अजय राग हो जाए दुख हो जाए
राग दुख शोक जाग
मोह सब
सब कुछ उनको हो गया, बहुत दुखी होकर के बेचारे। आज जब लौट करके आए तो एकदम बदल गए, अब प्रेस में नहीं रहे, और कब से जो निकले वो उन्होंने प्रतिज्ञा कर दिया, उन्होंने बिगड़ करके अब हम प्रेस का काम जब लगाएंगे भी तो नहीं करेंगे, तो उस सचमुच में ऐसा ही हो गया, फिर प्रेस में वो नहीं लगे प्रचार करने, अब तो दो दो तीन तीन घंटा व्याख्या और क्या क्या करने लगे
सब।
और दूसरी बात, एक समय वो बीच बीच में प्रेस में रहते हुए कभी कभी दो एक दिन के लिए निकल जाते तो कोई को पता नहीं कि कहां गए, उनकी एक विशेषता यह है क्या करेंगे ये बोलेंगे नहीं, कहां जाना है ये भी नहीं कहेंगे, किसी से भी नहीं कहेंगे,
पर उन्हें समय
है बोलते ही ना जी कुछ जाए, रात में 9 बजे चाहेंगे 8 बजे, एक बार 8 बजे रात में वहां से निकले चुचुरा से गाड़ी पकड़ करके कलकत्ता हो करके कृष्णनगर 24 परगना में काशीनगर के पास में,
तो जब स्टेशन जयपुर में उतरे
तो जयनगर जयनगर
जयनगर जयनगर उतरे तो उतर करके और वहां से चले पैदल, और कोई उस समय उपाय नहीं था, जाना है करीब करीब 3 मील 4 मील, 4 मील जाना है, रात हो गई है 11 बज गया है, और उस समय में वो उनको जाना है वहां पर, रास्ता बड़ा बीहड़। एक जगह आए तो देखा जैसे रात में 12 बजे करीब में उत्सव हो रहा है, नदी के किनारे विवाह हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो विवाह में पूरी टूरी सब बन रही है और क्या क्या हो रहा है और नाच गान तमाशा हो रहा है। इतने में जो विवाह वाले बाराती थे, लड़की का बाप जैसा, वो आकर का उनको प्रणाम करके कहा, महाराज जी
लड़की को आशीर्वाद दे दीजिए,
आप लड़की को थोड़ा सा आशीर्वाद देने के लिए चलिए, आशीर्वाद देकर के तब जाए। महाराज जी मैंने तो उस समय तो ब्रह्मचारी थे, शायद सफेद कपड़ा ही था उस समय की, लाल कपड़ा था भी आ जाए तो उसमें चलिए, तो उस समय में छोटी सी
हुआ चलू ना,
दुबले पतले एकदम, मोटा तो अब हो गए। तो ये कथाएं बच्चों को सुनाते थे और उनका खड़ा हो
जाता,
ऐसे बच्चों को कहानी कहने में बड़े पटू, तो वो बच्चों को सुना रहे हैं, जैसे मैं वैसे जब वहां आया तो देखा जब बारात और लड़की वाला करा जी आशीर्वाद दे दीजिए, अब उससे चारों पांच तरफ में खड़े हो गए जी चलिए, देखे जी क्या करें, जैसे हमको कुछ डर भी लगा, रो बच्चों कहते हैं ये शादी हो रही है क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा शादी, ये समझ भी नहीं सके जैसे ये कोई कुछ है, सचमुच शादी ही है ऐसा। थोड़ी देर के बाद में ये हरि नाम करने लगे, थोड़ी दूर जा करके और वो आगे आगे ले जा रहे हैं बड़े आनंद से, यदि चले गए होते तो प्राण बचना बड़ा भारी असंभव था। फिर से क्या सोचा और हरि नाम करते करते फिर वहां से चले आए, फिर बाधा नहीं दी, हरि नाम करने लगे जोर जोर से, तो उगार जब यहां आए तो पिसी माँ ने उनसे पूछा, जा रही बाबा तुम्हें एक कितनी आसू, कोई माछ खाने तो भीषण अवस्था, उखाने भूत भूत सब बगल गया, भूत रहते हैं तो वहां तो बारात थी, वहां पर भूत का कोई बात, अरे वो बारात नहीं थी, कोई शादी फादी नहीं, वो तो भूत थे सब, ऐसा करता है यार बाबा, फिर नहीं बैठा ऐसी ऐसी सब बात।
ওখানে মানে যেদিন বলছিলেন এ বিষয়ে যখন কৃষক কাজ করতে দিমাগ একদম গরম হয়ে যেত তখন চলে যেতাম, পরমুদে বলতে মোল্লা দোল মসজিদে দেখ ওই পিসি ঘর কিছু কোথায় যাবে,
যা গুরুজি বক্তৃতা করতে থে লিখনে মে বহুত তেজ, এক সময় মে এক মহিনে মে 30 দিন হতে হ্যায়, 30 দিন মে 40
धर्मसभा
किया गुरु जी, जहां जहां कुछ होती बामन महाराज जी चक लिख लेते, वही सब पत्रिका में ये सब छपता था। बोसपाड़ा में जब गौड़ीय मठ को छोड़कर के ये आए तो बोसपाड़ा में गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना हुई, तो ये भी थे, रसोई सोई बना करके सब वैष्णवों को खिलाना पिलाना ये सब परिवेशन करना ये सब कर। उसी समय में श्रीधर महाराज जी गए थे और ये हमारे नृसिंह महाराज जी थे, अभय चरणार्थ संभक्त वेदांत से, और अभी हम लोगों में जीवित एक आदमी और है शांत महाराज, उसमें ब्रह्मचारी था, अभी उसकी उम्र 95 या 96 कहते हैं अभी जी है, तो वहीं पर गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना हुई, तब से ये है, उसके बहुत पहले से है।
पैसे आंगुल कितने हैं इसलिए?
एक समय की बात है, प्रेस में चुचुड़ा में वो प्रूफ देखते समय देखने के बाद उसका करेक्शन होता है, तो करेक्शन करने वाला कोई नहीं था, तो अपने ही मशीन चला करके और उसको प्रूफ निकाल करके और उसको करेक्शन करके और उसको चालू कर दिया प्रेस को और कागज देने लगे। इतने में हाथ पर वो ऊपर से पूरा हाथ करके आ गया, हाथ एकदम पीस गया और आंगुल भी कट गई सर, लहू लुहान हो गया। गुरु महाराज जी अपने घर में थे, सुना जैसे ऐसा हो गया, गुरु महाराज जी भी रोने लग गए और जल्दी से उनको पकड़ करके बस एकदम सीधा कलकत्ता ले गए और कलकत्ता ले जा करके मेडिकल कॉलेज में उनको दो चार दिन रख करके ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ धीरे धीरे जब हुए गुरु महाराज जी उद्विग्न हो गए, उनके लिए रोने लग गए। वैसे गुरु महाराज जी बड़े गंभीर प्रकृति, कभी भी ऐसा नहीं देखा जाए, किंतु उस समय मैं मठ में आ गया था, उस समय था मैं मठ में, तो मठ में नहीं था, गुरु जी के साथ में प्रचार से अभी आया हुआ था, हम अभी भी शाम कर रहे थे, या मैं सीधा बाड़ी में आनंद के साथ में था उस समय। और भी एक बार वह स्वस्थ हो गए तो सब काम गुरु महाराज जी छोड़ छाड़ करके चले गए उनको लेकर के नैनीताल के पास में,
शिमला
शिमला शिमला में ले जाकर के उनको चिकित्सा कराया। अंत में उनके गुण हैं बतलाया, लज्जा पहला, अपनी कभी भी प्रशंसा नहीं करना, बहुत गंभीर रहना, स्मरण शक्ति अद्भुत, वाग्मिता भी है, लेखक अच्छे हैं, बहुत लेखक, गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र और सब कुछ बहुत से ग्रंथों का उन्होंने प्रकाशन किया है। अहंकार शून्यता है। दूसरी बात, किसको देते हैं कुछ, कभी भी नहीं कहेंगे किसी से जो मैंने उसको कुछ दिया है, हैं? ये उनमें विशेष गुण है। हम लोग हैं तो एक पैसा देंगे तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे, और वो किसको क्या देते हैं ये किसी को भी पता नहीं, चुपचाप दे देंगे, कितना दिया क्या दिया कुछ किसी को पता नहीं। कोई शिष्य लेकर के, कोई कलकत्ता का शिष्य के पास में भी सबको विश्वास कर लेते हैं, वो विश्वास करके उसके पास में सब कुछ रख तो वो घर चला गया, कितना ले गया किसी को पता आज तक नहीं लगा, अंदाज सभी करते हैं लेकर के चला गया। क्या कमल का भाई है, कौन
कमल,
कमल ही और गुरु जी के अप्रकट हो जाने के बाद में मैं मथुरा में केशव जी गौड़ीय मठ में कुछ अदल बदल कर रहा था, हमारे पास में पैसा नहीं था और लोगों से परिचय भी नहीं था, मथुरा वालों से भी उतना भी कोई किसी से परिचय नहीं था, तो मैं कैसे बनाऊं कैसे क्या करूं, किंतु आरंभ तो कर दिया है। बाबू महाराज जी को पता लगा तो हमको चुपके से किसी ने नहीं जाना 5,000 रुपया पहले दिया, तो उसी से लेकर के आरंभ किया धीरे 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 ये सब हो। तो किसी को भी देंगे, कितने लोगों को क्या दिया होगा हमको तो पता नहीं, क्योंकि प्रणामी उनामी तो आती है, तो वो किसको क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं किसी को नहीं पता, छुपा करके रखते हैं। दान ऐसा ही होना चाहिए, इस हाथ से दान दे तो ये नहीं। और गोपनीयता, गोपनीय रखते हैं, बहुत इस विषय में बहुत वाकिफ है, बहुत गोपनीय बात रखते हैं, कोई झट उनका मन का भेद नहीं ले सकता, आचार्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। और शिष्य वात्सल्य तो पूछो मत, शिष्य बहुत वात्सल्य है, ऐसे लल्लू चप्पू शिष्यों से बात करेंगे सब शिष्य समझेगा आज हमको बहुत प्यार करते हैं, सबसे बड़ा प्यार करते हैं, हम लोग को उतना प्यार प्यार नहीं आता है जितना प्यार, किंतु उनको बहुत प्यार करने आता है, तो शिष्य वात्सल्य है, अभी भी वैराग्य उसी में है,
वैष्णवोचित जो गुण होना चाहिए उनमें गुण सबसे विशेष बात है। वैष्णव सिद्धांत में परिपूर्ण है, जानते हैं वो सब। और एक हम लोग जब जहां रहेंगे अंततः मैं रहूंगा, भाषण नहीं देंगे, देंगे ठेला ठेली कर।
हम मुद्रा से ना अपना संध्या से बोले नवीन कारासन में बोले जाकर तुले दिया तो हम जाओ
हमारा हम हमारे सामने नहीं देंगे, कहेंगे आप कहिए, आप कहिए, आप बोलिए जोर से। लोग सब श्रोता देखते रहेंगे, हम लोगों में 5-10 मिनट बस इसी में लग जाएगा, आप बोलिए तो आप। और हमसे कोई गलती भी हो जाएगी कुछ कहेंगे, पीछे भी नहीं बात कहेंगे, जानते हैं जी कुछ। एक समय कहीं वक्तृता हो रही थी, मैंने श्यामानंद जी का ये श्याम सुंदर को श्याम सुंदर मंदिर है ना, तो उसको मैंने कहा दिया बलदेव विद्याभूषण जी का ये मंदिर बनाया हुआ है, इनको है श्यामानंद प्रभु जी। तो कुछ दिनों के बाद में हमसे बोले जैसे वो श्यामानंद जी का वो है बलदेव विद्याभूषण का, बहुत पीछे से बना प्रतिभाग, वैसा खूब डायरेक्ट प्रतिभाग नहीं करते। तो हम जहां रहेंगे तो वैसे ही अभी भी हम ही को बोलने के लिए देंगे, कुछ लिखने पर कभी होगा तो कहिए आप ही लिखिए। ये दूसरों को सम्मान देना ऐसा ही, अपने अमानी और दूसरों को सम्मान देना, ये वैष्णवों का धर्म है। तो आज उनकी आविर्भाव तिथि है, जन्म तिथि नहीं है, आविर्भाव तिथि है। आज यहां तो डायरेक्ट रूप में उपस्थित नहीं होने पर उपस्थित हैं। कैसे उपस्थित हैं? भगवान कहां रहते हैं?
जहां गायन
तो वो किसी न किसी रूप में यहां पर जरूर उपस्थित है। तो आप सब लोगों पर वो कृपा करें, आप लोग भी उनका आदर्श ग्रहण कर सकें, यदि सचमुच में वैसा बन सकें, वैसा रह करके भजन कर सकें, गुरु की सेवा कर सकें, वैष्णवों की सेवा कर सकें यदि तो ठीक है, उनके चरणों में पुष्पांजलि हुई। और यदि उनका आचरण और विचार नहीं ग्रहण किया तो जितना भी आप पुष्पांजलि देंगे उनके चरणों में पुष्पांजलि हुई। इसलिए आप लोग परिश्रम करेंगे, वैसा साधन भजन करेंगे, उनके गुणों को अपनाने की चेष्टा करेंगे, उनके विचारों को भी ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे, वैसे हरिनाम करने की चेष्टा करेंगे, सहिष्णु वैसा होएंगे, तब उनके चरणों में पुष्पांजलि होती है। हम लोग उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी जैसी गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, भगवत भक्ति है, वैसे हम लोगों को भी गुरु के चरणों में निष्ठा हो और वैसे हम लोग भी गुरु की सेवा कर सकें। आज यही कह करके वक्तव्य समाप्त करते हैं, फिर कभी होगा तो विशेष रूप से विचार करेंगे। आज यही वंशा कल चतुर्भ्य कृपा सिंधु भई वचन पतिता नाम पावन
Krishna 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 Hare 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 Hare